रूप, रूप का कोई अर्थ बतला सकता है? रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु नाम दिए हैं, रूप का कोई अर्थ बतला सकता है किस अर्थ में दिए हैं? रूपयति निरूपयति इति रूप, जो निरूपण करे, निरूपण समझ रहे हैं ना, वर्णन करे, वर्णन निरूपण, जो किसी चीज का शेप दे, रूप प्रदान करे, तो उसको रूप कहते हैं। तो रूप गोस्वामी इस विषय में बहुत दक्ष हैं, अनवर्थ नाम है, कई एक रचना किए हैं। और रूप गोस्वामी के विषय में एक दो बात कोई बतलाइए, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो अभी दो चार दिन के लिए आए हैं उनसे नहीं पूछ रहा, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनमें से एक दो बात कुछ रूप गोस्वामी के विषय में बतलाइए। छह गोस्वामियों के नायक हैं, ठीक। कहाँ जन्म हुआ था? मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। इस बात से कितने लोग सहमत हैं, हाथ उठाइए। ये कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी का मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। एक आध सपोर्टर खोजिए आप अपना।
नहीं, वो बाद में मुस्लिम में भूल गया था, बाद में मुस्लिम बन गया, पहले नहीं हुआ था।
जन्म कहाँ हुआ था? सारस्वत ब्राह्मण कुल में हुआ था, ठीक। सारस्वत ब्राह्मण कुल, मूलतः वे दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। दाक्षिणात्य का क्या अर्थ हुआ? दक्षिण भारत के थे, कर्नाटक, उनके पूर्वज लोग कर्नाटक के राज पुरोहित थे। कौन जगह? एक छोटा सा सेंटर है कारवाड़, उसी क्षेत्र के भक्ति रसामृत महाराज, उसी क्षेत्र के हैं, रूप सनातन के क्षेत्र के हैं। ठीक। चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी कितने बार मिले हैं, किस किस जगह पर भेंट हुई है? राम के लिए मिले, प्रयागराज, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। और ये भक्ति रसामृत सिंधु की रचना रूप गोस्वामी किए हैं, और इसका सारांश श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तुत किए हैं। तो हम लोगों का बेस यही होगा, इसी ग्रंथ को पढ़ना है, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सगे भाई हैं, प्रायः रूप साथ नाम आता है। और एक प्रभु जी का है कि रूप गोस्वामी छह गोस्वामियों के लीडर हैं, नायक हैं, लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए। वे शिष्य चैतन्य महाप्रभु के हैं, लेकिन रूप गोस्वामी को भी अपना गुरु मानते हैं। सनातन गोस्वामी को भी अपना गुरु मानते हैं। सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी दो भाई हुए और उनके एक भाई और थे, कौन नाम बतलाएगा? आए अनुपम, जीव गोस्वामी नहीं, अनुपम के पुत्र हैं जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी के पिता अनुपम ये रूप गोस्वामी के छोटे भाई। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी आमुख लिखे हैं, ग्रंथ का समरी सारांश देने के पहले आमुख लिखे हैं। तो कितने लोग पढ़ करके आए हैं
आमुख? प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन सठ गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई सनातन कर्मशः दबीर खास तथा साकर मल्लिक कहलाते थे और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्क्षण निकाल दिया जाता था। इन दोनों भाइयों दबीर खास तथा साकर मल्लिक की स्थिति सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है।
ठीक है, रुक जाओ। तो रूप और सनातन को जाति से भ्रष्ट माना जा रहा था, वे अपने जाति से च्युत हो गए क्योंकि वे मुसलमान शासक के यहाँ नौकरी कर रहे थे, नवाब हुसैन शाह। रूप सनातन बहुत प्रतिभाशाली थे और हम ऐसा समझ रहे हैं कि उनका कैंपस सिलेक्शन हो गया। देखते हैं ना कई एक जगह अभी कोई स्टूडेंट कोर्स पूरा करते हैं तब तो कोई कंपनी आ करके उनको नौकरी में ले लेती है। तो रूप सनातन इतने प्रतिभाशाली थे कि राजा खुद ही मंत्री पद के लिए उनका चयन कर लिया और मंत्री पद दे दिया। ये बहुत प्रतिभाशाली थे लेकिन अब मुसलमान के यहाँ सेवा कर रहे थे वो, अब हिंदू समाज उनको ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं था और उनकी भी भावना हो गई थी कि हम जाति से च्युत हो गए। लेकिन किसी तरह वे चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुने और चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुने तो चैतन्य महाप्रभु से संपर्क करना चाहते थे। वो चैतन्य महाप्रभु कि यहाँ वे पत्र लिखा करते थे। वो भगवान की विशेषता है कि किसी के भावना को वे आदर करते हैं। भगवान को कृतज्ञ कहा जाता है, कोई उनकी सेवा करता है तो उसको वे समझते हैं, जानते हैं, कृतज्ञ नहीं है, उसको याद रखते हैं। सेवा करने की बात तो दूर है, प्रत्यक्ष सेवा करने की बात दूर है, कोई संकल्प भी करता है तो और भगवान की विशेषता है कि कोई भगवान के पास जाना चाहता है और वो कुछ कठिनाई अनुभव कर रहा है, खुद नहीं जा पाता, तो भगवान ही उसके पास चले आते हैं। रूप सनातन के साथ भी ऐसा ही है, और केवल रूप सनातन के साथ ही नहीं है, अनेक लोगों के साथ ऐसा है। अब तो हम कथा करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक दो उदाहरण हम देते हैं। यही कालीय दह है। कालीय की पत्नियां भगवान की भक्त थी, पतिव्रता थी, और भगवान के विषय में सुन चुकी थी। भगवान तो जब महावन में थे तो दूसरी बात थी, जब वृंदावन में ही आ गए तो कालीय की पत्नियां बार बार आग्रह करती थी अपने पति से कि चलिए भगवान का दर्शन करके हम लोग आए, लेकिन कालीय अपने अभिमान में था, उसको भगवान से क्या मतलब, बहुत अभिमान में था। कालीय की पत्नियां बहुत प्रार्थना करती थी कि अब तो एकदम नजदीक में है, खर्चा बहुत कम लगेगा, एक टेम्पो रिजर्व कर लेंगे, चलेंगे, लेकिन वह नहीं सुनता था। तो वास्तव में भगवान जो कालीय हृदय में आए, उसके छह मुख्य कारण था कालीय की पत्नियों पर अनुग्रह करना। उनके पास संपदा बहुत था, नाग के पास तो मणि है, कई बहुमूल्य चीज था, तो ये चाहते थे कि हम भगवान को कुछ अर्पित करें, लेकिन पतिव्रता है, पति महोदय अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो भगवान उनकी भावना को जानते हैं, भगवान खुद ही वहां पहुंच गए। यद्यपि वहां पहुंचे तो कालीय की पत्नियां बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगी कि जिस भगवान को हम लोग जा करके और सेवा करना चाहते थे, और वही भगवान हमारे घर में आए, लेकिन हमारा पति कितना दुर्व्यवहार कर रहा है, अपने भोग में बांध लिया है। तो नाग पत्नियां लज्जा के मारे सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जब भगवान कालीय के मस्तक पर प्रहार किए, जगत का भार ले करके और मार रहे थे उसके मस्तक पर, तो जब बहुत चोट खाया तब लिखा स्मृत्वा चराचर गुरु, तब उसको स्मरण आया। तो एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या स्मरण आया, उत्तर दिया गया है कि तब उसको स्मरण आया कि इसी व्यक्ति के विषय में हमारी पत्नियां कह रही थी। तो मनसा शरणम जगामा, मार खा करके मन ही मन भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिया। ना कि पत्नियां लज्जा व सामने नहीं आ रही थी, लेकिन भगवान के शरणागति स्वीकार किया तो नाग के आंख से वे समझ गई कि अब हमारे पति भक्त हो गए। तब सामने आई और भगवान के प्रचुर सेवा की, भगवान अवसर दिए, अपने हाथ से सुगंधी लगाई, कई एक प्रकार का तेल लगाई, कई एक प्रकार का आभूषण पहनाई, भगवान अवसर प्रदान करते हैं, किसी के संकल्प को वे समझते हैं। मिथिला में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था श्रुतदेव, बहुत गरीब व्यक्ति थे, ठाकुर जी की सेवा रोज करते थे, लेकिन अपना नियम रखे थे कि अह अह एक दिन के सामग्री को स्वीकार करते थे, मिलने पर भी दूसरे दिन के लिए संग्रह नहीं करते थे, वहां फंड रेजिंग का कोई स्कोप नहीं था। कोई मान लीजिए कि फूल दे दिया तो एक दिन का, अगरबत्ती दिया तो एक दिन का लेते थे, ऐसा नहीं कि रोज पूजा करना ही है तो संग्रह कर लें। तो वो मिथिला में थे, मिथिला समझ रहे हैं ना, भागलपुर साइड में, दरभंगा साइड में, और भगवान द्वारका में उस समय रह रहे थे। उनकी इच्छा होती थी कि भगवान का एक बार दर्शन कर लें। लेकिन उनके सामने समस्या थी कि ठाकुर जी की पूजा छूट जाएगी, तो इसलिए जाते नहीं थे। उनके भावना को समझ करके भगवान ही एक दिन वहाँ के लिए यात्रा निर्धारित कर दिए। और भगवान कौतुकी हैं, कोई पहले से प्लान नहीं किए। रोज का उनका रूटीन है कि दारुक हाथ पकड़ करके रथ पर बैठा करके सुधर्मा सभा में ले जाते थे। तो एक दिन दारुक लेकर रथ लेकर के आए और वैसे ही भगवान को रथ पर बैठाए। वो कहे कि आज जनकपुर चलना है, मिथिला चलना है। पहले से कोई योजना नहीं था। जब ये पता चला दूसरे लोगों को, ऋषियों को, कि भगवान मिथिला जा रहे हैं, तो उनकी भी इच्छाएं, तो सबको भगवान बैठा करके आए। तो हम यह कह रहे हैं कि कभी कभी होता है कि भगवान से मिलने की इच्छा होती है, लेकिन किसी परिस्थिति वश, किसी बंधन से हम सक्षम नहीं होते हैं, तो भगवान खुद ही पहुंच जाते हैं। रूप सनातन की यही स्थिति थी। रूप सनातन अपने हृदय की बात पत्र के द्वारा चैतन्य महाप्रभु को भेजते थे, लेकिन नौकरी में थे, मुसलमान के नौकरी में थे, तो प्रकट साहस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो उनके भावना को जानते थे, तो वृंदावन की यात्रा के लिए चले जगन्नाथपुरी से। लेकिन कई एक प्रमाण है कि वृंदावन के लिए नहीं चले थे। वे घोषित तो किए कि वृंदावन जाना है, लेकिन उनका उद्देश्य था रूप सनातन से मिलना। क्योंकि इसका प्रमाण है कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए चले, तो एक नृसिंहानंद ब्रह्मचारी थे, वे भगवान के मार्ग को सजा रहे थे मन ही मन। जिधर से चैतन्य महाप्रभु को जाना है, तो उसको पुष्प से उसमें सब ये कड़ा अंश निकाल करके और मार्ग को सजा रहे थे। कई एक तरह से सजा रहे थे, खूब अच्छा से पुष्प को सजा सजा करके। लेकिन अब कनाई नाटशाला के बाद वो मार्ग मन में भी सज रहा था। वो मन से सजा रहे थे, लेकिन मन में अब मार्ग का सजावट कर ही नहीं पा रहे थे। तो उसी समय वो घोषित कर दिए थे, देख लीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु कनाई नाटशाला से आगे नहीं जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु बाद में खुद स्वीकार किए हैं कि यहाँ आने का हमारा दूसरा प्रयोजन नहीं है, हम आप लोगों से मिलने आया है। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए यात्रा पर चले। बहुत दिन से कह रहे थे वृंदावन आने को, लेकिन वहाँ के भक्त लोग अनुमति नहीं दे रहे थे। अब कहते कहते विजयादशमी दिन करीला प्यार, यही जो अगले महीना में दशमी आएगा शुक्ल पक्ष का, विजयादशमी कहते हैं, उसी दिन भगवान रावण पर विजय प्राप्त किए थे। तो उस तिथि को बहुत पवित्र माना जाता है और सिद्ध तिथि माना जाता है। कोई कार्य प्रारंभ करना है तो उस दिन अब नक्षत्र ये सब गणना करने की जरूरत नहीं किया जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु विजयादशमी के दिन यात्रा प्रारंभ किए। अब उनके साथ बहुत बहुत लोग चलने लगे, अब आगे और लोग ज्वाइन करने लगे, लाखों लाख लोग चलने लगे। तो यह चर्चा का विषय बन गया। और जब तक वे उड़ीसा के सीमा कोई समय थी, राजा ही निर्देश दे दिया था कि इस यात्रा को कोई रोकेगा नहीं, कहीं भी टैक्स नहीं लेंगे। उस समय नाव से पार करने में टैक्स लगता था, कोई टैक्स नहीं लेगा। लेकिन बंगाल के सीमा में आए तो इधर मुसलमानों का राज था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ऐसा प्रभाव था कि मुस्लिम राजा भी कोई रोक टोक नहीं किए। लेकिन वो लोग चर्चा बहुत कर रहे थे, हमको उस डिटेल में जाने का समय नहीं है। और एक दिन नवाब हुसैन खां ही हुसैन खां ये पूछने लगा रूप गोस्वामी से कि ये जो सन्यासी आ रहा है वो कैसा आदमी है, क्यों उसके साथ लाखों लाख लोग चल रहे हैं। और रूप गोस्वामी कहे यार ये बात हमसे क्यों आप पूछ रहे हैं, क्यों कौन है, ये बात आप अपने मन से क्यों नहीं पूछ रहे, पूछा पर मन, ये जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि सन्यासी कौन है, क्यों इसका इतना प्रभाव है, तो हमसे क्यों पूछ रहे, आप अपने मन से पूछिए। तो राजा कहता है कि हमको तो लगता है कि वही भगवान है। उस सनातन रूप गोस्वामी कहे कि ठीक आप सोच रहे हैं, जो आपको राज्य दिया है वही दिया है, उसके पहले दूसरे लोगों से भी पूछे हैं, एक छत्री थे, अरे वो फकीर है, दो चार लोग हैं झूठे, मीडिया वाले इतना छाप देते हैं कि वो इसलिए कहे कहीं मुस्लिम है प्रभावशाली व्यक्ति जान करके कहीं अवरोध न डाले। लेकिन रूप गोस्वामी पूछ रहे, अपने मन से पूछिए। चरितामृत में वर्णन है कि सुनी प्रभु कह नहीं, घरे आसी दुई भाई जुगति करिया, प्रभु देखिवारे चले बेस लुकाइया। राजा से बात करने के बाद दोनों भाई अपने घर आए, राजा भी अपने घर में गया। अब कह रहे हैं कि घरे आसे दुई भाई जुगति करिया, दोनों भाई अब विचार करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु से कैसे भेंट किया जाए। तो अर्धरात्र दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, प्रथम मिलीला नित्यानंद हरिदास सने। दोनों भाई अपना वेश बदल करके और छिप करके चले चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा कर रहे थे तो उनका नियम था कि किसी गांव में नहीं रुकते थे, गांव के बाहर रुकते थे। तो अर्धरात्र दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, चैतन्य महाप्रभु का जहाँ कैंप था, जहाँ रुके थे, तो अर्धरात्रि को दोनों भाई मतलब रूप सनातन और प्रथम मिलीला नित्यानंद हरिदास सने, वहाँ आ करके सबसे पहले नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से मिले। भगवान से मिलने के लिए भगवान के भक्तों का आश्रय जरूरी है। तारा दुई जने जन आईला प्रभु र गोचर, रूप साकर मलिक आईला तोमा देखिवारे। वे जाकर के चैतन्य महाप्रभु से बतलाए कि साकर मलिक और दबीर खास आपसे मिलने आए। दुई गुच्छ तीर्ण दोहे दसन धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। और दबीर खास और साकिर मलिक रूप सनातन जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए तो दांत में घास का गुच्छा रखे थे और गले में वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया, गले में वस्त्र बांधे थे और चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किए। एक दांत में तीर्ण का गुच्छा क्यों रखे थे, घास क्यों रखे थे, अपने को यह दिखाने के लिए कि हम लोग पशु के स्तर के हैं। जैसे पशु घास चरते हैं तो यह अपने को दिखाने के लिए कि पशु के स्तर के हैं। मुंह दांत में तीर्ण का गुच्छा लिए थे और गले में कपड़ा बांधे थे यह दिखाने के लिए कि जैसे पशु को बांधा जाता है उस लायक हम लोग हैं, हम लोग पशु के स्तर के। तो पशु के दो लक्षण को दिखा रहे हैं, पशु को तीर्णचर कहा ही जाता है, तीर्णचर अनुगम। गोपी गीत में आप लोग बोलते हैं तीर्णचर पशु को कहते हैं। तो यह दिखाने के लिए कि हम पशु के तुल्य हैं, उसके दो लक्षण को वे धारण किए हैं, तृण में तीर्ण को अपने दांत में धारण किए हैं और गले में वस्त्र मतलब रस्सी धारण किए हैं, तो गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। दैन्य रोदन करे आनंद बिहवल, अपने स्थिति पर विचार करके दोनों भाई बहुत रो रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ है तो इससे वो आनंद से बिहवल थे। प्रभु कहे उठा उठा हई ल मंगल, उठी दुई भाई तबे दंते तीर्ण धरी, दैन्य कर स्तुति करे जोड़ हाथ करी। चैतन्य महाप्रभु कहे कि उठो उठो अब तो तुम लोगों का मंगल हो गया। किधर से फोन है, यहाँ बड़ा ताली नहीं कोई बजाया है। लड़के प्रसन्न हो जाते हैं। आए हाँ आए संख्या तो आज तो मिठाई नहीं है ना, जिस दिन मिठाई आएगा उस दिन संख्या होगा ना। यहाँ का सिस्टम है कि फोन नहीं बजना चाहिए और बज गया तो फोन ध्यान से पहले ही साइलेंस में कर लेना चाहिए, डिस्टर्बेंस होता है ना। आए हाँ तो इसी से दंड या पुरस्कार मिलता है ना। अब तो रुक गया ना फ्लो। दैन्य कर स्तुति करे जोड़ हाथ करी, तो वे लोग स्तुति करने लगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुमार अग्रते प्रभु कहिते वासी लाज। दोनों भाई कह रहे हैं कि हम लोग नीच जाति के हैं और नीच व्यक्ति का संग किए हैं और काम भी नीच कर रहे हैं, अब हमने अपने स्थिति को आपके समक्ष कहने में बहुत लज्जा महसूस कर रहे हैं। और वे अपनी स्थिति व्यक्त कर रहे हैं कि मत्तुल्य नास्ति पापात्मा, हमारे समान कोई पापी नहीं है, ना पराधी न कश्चन, कोई अपराधी नहीं है। परिहारे पि लज्जा में किम ब्रूबे पुरुषोत्तम, अब हम लोगों के पाप का कैसे मार्जन हो गए पूछने में भी लज्जा अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वे आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो दया करने के लिए अवतरित हुए हैं, तो मोरे दया करी कर स्वदया सफल, हम लोगों पर दया करके अपने दया को सफल कीजिए। अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल, जब हम लोगों का उद्धार करेंगे तब आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी, पूरे ब्रह्मांड के लोग स्वीकार करेंगे कि आप दयालु हैं। अपना अयोग्य देखे मने पाऊं क्षोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोग, कि अपने तरफ देखने पर तो मन ग्लानी से भर जाता है, लेकिन आपके उदारता के तरफ देखने से वो मन में लोभ आ जाता है कि हम लोग आपसे कुछ मांग करें। तो अपने बमन जैसे चांद धरिते चाहे करे, तैसे ये वांछा मोरे उठे अंतरे, यानी कि हम लोगों की जो स्थिति है इच्छा जैसी जग रही है, तो हमारी स्थिति वही है कि जैसे कोई बवना चंद्रमा को पकड़ना चाहे, अरे लंबा आदमी भी चंद्रमा को नहीं पकड़ पाएगा और बवना क्या पकड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जैसे कोई बवना चंद्रमा को पकड़ना चाहे, वैसे हम लोग कुछ कहने में लज्जा महसूस कर रहे हैं, लेकिन तथापि तुम्हारे गुणे उपज आए लोग, लेकिन आप इतने उदार हैं कि कहने के साहस हो रहा है। तो वे ये जो प्रसिद्ध श्लोक है नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, उसी समय रूप सनातन बोले हैं चैतन्य महाप्रभु के उदारता को दिखाने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु से मांग कर रहे हैं कि भवंत मेवानुचरण निरंतरम प्रशांत निःशेष मनोरथांतर कदाह मैकांतिक नित्य किंकर प्रहर्ष इस्यामि सनाथ जीवितम। ये करें कि हे नाथ कब ऐसा दिन होगा कि भवंतम एव भवंतम नहीं भवंतम एव केवल आपकी ही सेवा करते हुए प्रशांत निःशेष मनोरथांतर और जितने मनोरथ हैं सब शांत हो जाए तो यह स्थिति कब हम प्राप्त करेंगे, कब अपने जीवन को सुखी करेंगे ऐसी स्थिति प्राप्त करके। तो वे चैतन्य महाप्रभु से अपने दैन्य को बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि सुनी प्रभु कहे सुन रूप दबिर खास तुम्हें दुई भाई मोर पुरातन दास। वे अपना दैन्य व्यक्त कर रहे थे, अपना मनोरथ प्रकट कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि सुनी प्रभु कहे सुन रूप दबिर खास तुम्हें दुई भाई मोर पुरातन दास। चैतन्य महाप्रभु कहे कि हे दबिर खास, हे साकर मल्लिक, तुम लोग हमारे पुरातन दास हो, आज है ते दोहार नाम रूप सनातन। चैतन्य महाप्रभु तुरंत दीक्षा दिए कि आज से तुम्हारा नाम रूप और सनातन हुआ, दैन्य छाड़ा तुमर दैन्य फाटे मोर मन। कि आप जितना दीन वचन बोल रहे हैं तो उससे तो हमारा मन फट रहा है, और दैन्य पत्र लिखी मोरे पठाइले बार बार। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप लोग तो बार बार अपने दैन्य को प्रकट किए हैं पत्र लिख करके, सही पत्र द्वारा जानी तोमार व्यवहार। जो आप लोग पत्र लिखे हैं तो पत्र से ही आपके स्थिति को हम जानते हैं, और तुम्हार हृदय इच्छा जानी पत्र द्वारे तोमा सिखाईते श्लोक पठाई ल तुम्हारे। यानी कि आप लोगों के मन में क्या इच्छा इसको मैं पहले से जानता था, और शिक्षा देने के लिए मैं श्लोक लेख करके भिंजा था। चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को एक श्लोक लेख करके भेजे थे, तो कह श्लोक है पर व्यसनी नारी व्यग्रापे गृह कर्मसु तदेवा स्वादयन्तन नवसंग अंत नवसंग रसायनम। श्लोक का भाव है कि पर व्यसनी नारी, कोई स्त्री है, कोई लड़की है, और उनका कोई विवाह के पहले ही प्रेम प्रसंग है, और विवाह हो गया फिर भी उसको भूली नहीं है, तो स्त्री वह लड़की व्यग्रापि गृह कर्मसु अपने घर गृहस्थी के काम में बहुत व्यग्र रहती है, लेकिन फिर भी मन में अपने पूर्व प्रेम प्रसंग का भी चिंतन करती रहती है। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पति के घर में है और अभी किसी दूसरे से प्रेम व्यवहार को भूली नहीं है, तो उसका चिंतन तो भीतर होता ही है, लेकिन घर का काम और अच्छा से नहीं करेगी, कहीं बैठ करके और अपने प्रेमी के विषय में सोचने लगे तो घर के लोग डाउट कर सकते हैं कि क्या सोच रही है, इसलिए घर का काम और अच्छा से करती है। तो यही लिखे थे, कहने का आशय था कि आप लोग राज काज में कोई ढील मत कीजिए, वो कार्य करते रहिए लेकिन भगवान का चिंतन करते रहिए। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि गौड़ निकटे आसते मोरे नाही प्रयोजन तोमा दोहा देखते मोर इह आगमन। नृसिंहानंद तो कहे ही थे कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने वाले नहीं है, चैतन्य महाप्रभु खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गौड़ निकटे आसिते, ये बंगाल में आने का हमारा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं था, तुमा दोहा देखिते मोरा यह आगमन, तुम दोनों को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूं। जन्मे जन्मे तुम्हें दोई किंकर अमार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार। और चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद दिए कि तुम लोग तो जन्म जन्म में हमारे किंकर हो, इस समय बाहरी रूप से बंधन में पड़े हो, तो कृष्ण जल्द ही तुम लोगों का उद्धार करेंगे। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु राम केली में मिले रूप सनातन से, उनको दीक्षा दे दिए और वे जगन्नाथपुरी वापस चले गए। रूप गोस्वामी प्रतीक्षा में थे कि कब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और इसके लिए वे एक व्यक्ति को वहां रखे थे जगन्नाथपुरी में कि चैतन्य महाप्रभु इधर से निकलेंगे तो तुम हमको सूचना देना। और चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के लिए प्रस्थान किए तो वह व्यक्ति रूप गोस्वामी को सूचना दिया, लेकिन सूचना देने में कुछ देर हुई, फिर रूप गोस्वामी रिजाइन किए, धन को सेटल किए, तो ऐसे उनको कुछ विलंब हो गया। चैतन्य महाप्रभु जेवे वृंदावन के लिए प्रस्थान किए तो इसका सूचना पाते ही रूप गोस्वामी रिजाइन दे दिए, लेकिन अब उनको हिसाब किताब करके पैसा मिला, और पैसा बहुत अधिक था, उसको वे विभाजित किए, आधा तो दान पुण्य में कर दिए प्रीचिंग के लिए, ब्राह्मणों को दान दे दिए, वैष्णवों को, आधा अपने परिवार को दे दिए और आधा बनिया के पास मोदी के पास रख दिए। मोदी शब्द है, मोदी उस व्यक्ति को कहते हैं जो कुछ ये कारोबार करता है पैसा वैसे का, साहूकार के पास रख दिए। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यही आदर्श विभाजन है, किसी भी व्यक्ति को अपने धन का ऐसे ही विभाजन करना चाहिए, खास करके गृहस्थों को ऐसे ही विभाजन करना चाहिए। और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन के तरफ बढ़े, लेकिन तब तक चैतन्य महाप्रभु वृंदावन दर्शन करके वापस जा रहे थे, तो प्रयागराज में उनसे भेंट हुई और सनातन गोस्वामी की भेंट वाराणसी में हुई। और प्रयाग में भेंट होने पर चैतन्य महाप्रभु 10 दिन तक रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए और सीधे भक्ति का ही निरूपण किए हैं। तो शिक्षा दे करके और कहे हैं यही भक्ति रसेर कैला दिग दर्शन इहार विस्तार मने करी भावन। है कि मैं तो संक्षेप में एक भक्ति रस का वर्णन किया, आप इसको विस्तार से विचार कीजिएगा। भाविते भाविते कृष्ण स्फुरय अंतर, कृष्ण कृपाय यज्ञ पाय रस सिंधु पार। कि बार बार चिंतन करने तो को आप समझ जाएंगे। तो ऐसे प्रयागराज में प्रत्यक्ष शिक्षा दिए और फिर रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी गए। तो वृंदावन जाह तुम्हें रहो वृंदावन, एक बार यह पठाई वो सनातन। जब जगन्नाथपुरी में रूप गोस्वामी गए, मिले चैतन्य महाप्रभु से, कुछ दिन रुके, तो चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिए कि अब तुम वृंदावन जाओ, वहीं रहो, लेकिन सनातन गोस्वामी को एक बार भेज देना। और ब्रजे तुम्हें रस शास्त्र कर निरूपण, ब्रज में रह करके भक्ति रस का तुम निरूपण करो, शास्त्र लिखो। लुप्त तीर्थ सब तार करिह प्रचरण, और जो भी तीर्थ लुप्त हो गया है तो उसको भी आप प्रकट कीजिए। तो इस प्रकार ये जो चैतन्य नहीं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, तो इसका सिनोप्सिस या इसका जो फैक्ट है, चैतन्य महाप्रभु अपने से रूप गोस्वामी को बतलाए हैं। तो एक तरह से भक्ति रसामृत सिंधु भगवान के डायरेक्ट शिक्षा पर आधारित है। रूप गोस्वामी इस ग्रंथ की रचना किए हैं और रूप गोस्वामी के प्राधिकार पर, उनके अथॉरिटी पर ही ये पूरा आंदोलन टिका हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी कहते। लेकिन प्रश्न होगा कि रूप गोस्वामी को क्यों स्वीकार किया जाए? तो एक तो आधार है कि चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट उनको शिक्षा दिए, भगवान ही शिक्षा दिए हैं। और दूसरी बात है कि रूप गोस्वामी जब ग्रंथ की रचना किए हैं तो शास्त्र पर आधारित है। कोई भी सिद्धांत दिए हैं तो तुरंत शास्त्र का उद्धरण दिए है। दो ग्राउंड बहुत प्रबल है, एक तो सीधे भगवान के शिक्षा है और ये पूर्णतः शास्त्र पर आधारित है। तो रूप गोस्वामी इस ग्रंथ की रचना किए। अभी ग्रंथ की रचना किस लिए किए? श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि रूप गोस्वामी तो पतित हो गए थे, समाज के लोग भी मानते थे कि मुसलमान हो गए हैं और उनकी भी भावना थी कि मुसलमान पति को भी गोस्वामी का पद दे दिए, जो गोस्वामी का पद ब्राह्मणों से भी ऊपर है। तो अवसर पा करके श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना हुई है सबको गोस्वामी पद तक पहुंचाने के लिए। भक्ति रसामृत सिंधु का जो अध्ययन करेगा, इसको आत्मसात करेगा, तो गोस्वामी के स्तर पर पहुंच जाएगा। तो आप लोगों के परीक्षा में एक प्रश्न आता है, आ सकता है कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। अब भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़िए, प्रभुपाद जी को पढ़िए, तो कई एक उद्देश्य आ जाते हैं। मूलतः रूप गोस्वामी लिखते हैं कि सुहृदाम प्रमोदाय, ये जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूं तो भक्तों के आनंद के लिए। तो एक तो प्रकट उत्तर हो गया भक्तों के आनंद के लिए, संस्कृत का शब्द आएगा सुहृदाम प्रमोदाय, उनके आनंद के लिए। श्रील प्रभुपाद जी यह संकेत दे रहे हैं कि जैसे रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च पद तक पहुंचा दिए, उसी तरह किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की गई। तो इस सबके लिए है, लेकिन आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि खास करके यह इस्कान के भक्तों के लिए है। वे ठीक से भक्ति को समझे, भक्ति में स्थिर रहे और निरंतर उन्नति करे। और भक्ति रसामृत सिंधु का एक उद्देश्य है भक्ति में स्थिरता प्राप्त करना और निरंतर उन्नति को प्राप्त करना। आगे के क्रम में सनातन गोस्वामी लिखे हैं कि यह ग्रंथ है भगवान के विश्राम मंदिर बने, उनके आनंद का विषय बने, और हमारे गुरु सनातन गोस्वामी के आनंद का विषय बने, वे इससे आनंदित हों। तो एक तो संस्कृत में है, वहां से उद्देश्य आएगा तो दो चार उद्देश्य वहीं मिल जाता है, और फिर अंग्रेजी से पढ़ेंगे तो दो चार और बढ़ जाता है, तो पांच छह उद्देश्य इसका हो जाता है। और इसमें से कितने उद्देश्य को आप लोग धारण किए, एक एक करके बोलिए कोई। हाँ बोलो हिमांशु। भक्तों के आनंद के लिए, ठीक, भक्ति में स्थिरता के लिए, ठीक, भक्ति में निरंतर उन्नति करने के लिए सभी व्यक्ति को गोस्वामी पद तक पहुंचाने के लिए, ठीक, और सनातन गोस्वामी के प्रसन्नता के लिए, हाँ आए, हाँ एक है, लेकिन वहां तक हम लोग आज पहुंच पाएंगे कि नहीं संशय है। तो लेखक हो गए रूप गोस्वामी, उनके विषय में कुछ कुछ परिचय आप लोगों को मिल गया, ग्रंथ के उद्देश्य के विषय में परिचय मिल गया। अब ग्रंथ का नाम क्या है कोई बोले? भक्ति रसामृत सिंधु। इसको तीन भाग में बांटना है, भक्ति रसामृत सिंधु। शब्द है चार, चार शब्द है ना, लेकिन इसको तीन भाग में बांटिए। हाँ, एक बांट रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, कोई दूसरा विभाजन भी हो सकता है, भक्ति रस एक, अमृत और सिंधु, ठीक है। तीन खंड करेंगे तो भक्ति रस अमृत सिंधु तीन शब्द है। तो भक्ति रस, सुशील माधव सामासिक पद है कि संधि है? सामासिक पद है, तो अर्थ बतलाओ, भक्ति रस का क्या अर्थ हुआ, कौन समास है? आए तत्पुरुष, ठीक, भक्ते है, हाँ, भक्ति का रस, भक्ति रस मतलब भक्ति संबंधित रस, भक्ति का रस। तो एक है, अब ये तीन शब्द को समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति रस और तो भक्ति रस को समझने के पहले रस क्या होता है इसको बतलाइए। कौन बतलाएगा? पानी में चीनी डाल देते हैं तो रस हो जाता है। रस का क्या अर्थ है? हाँ, इंदु लेखा हाथ उठा रही है, माइक लेकर के बोलो, माइक में रस, किचन इंचार्ज इसके अच्छी व्याख्या दे देंगे।
जो भक्ति में प्रेम पूर्वक,
नहीं, हम भक्ति रस नहीं पूछ रहे, रस केवल रस,
प्रेम पूर्वक सेवा में जो आनंद मिलता है उसको रस बोलते हैं।
हाँ, सेवा, किसी की हम सेवा कर रहे हैं और उसमें एक रस की अनुभूति होती है, एक आनंद की, संतुष्टि की होती है, किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमको एक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसी को रस कहते हैं। आखिर कोई परिश्रम कर रहा है तो कुछ उसको सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, तभी कर रहा है ना। कोई स्त्री है और चार बजे से ही जग करके, जाड़ा का दिन है, फिर भी बर्तन धो रही है ठंडा में, और आंगन लीप रही है, जाड़ा के दिन में कितना कठिन काम है, लेकिन फिर भी अपने पति को या पुत्र को भोजन करा देती है तो उसको संतुष्टि मिलता है, इसको रस कहेंगे। या कोई पुरुष है वो कितना कठिन परिश्रम करते हैं, वो जाड़ा हो कुछ हो, जग करके तैयार और 20-20 किलोमीटर तक भागते हुए जाते हैं, और वहां भी अब बैठते नहीं है, बहुत बहुत कार्य रहता है, कौन कौन क्या क्या बात बोलता है सबको सहते हैं, लेकिन अब जो पगार जिस दिन मिलता है अपने पत्नी को हाथ में दिए, एक संतुष्टि, वो इसी को रस कहा जाता है। वो आखिर कुछ रस संतुष्टि अनुभव कर रहा है तब ना उतना परिश्रम कर रहा है। तो किसी भी सेवा करने में जो हमको संतुष्टि का अनुभव हो रहा है तो उसको रस कहा जाता है, और यही रस व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। नहीं तो कोई रस न मिले, कोई संतुष्टि न मिले तो किसका जी भाखा है, कौन फालतू का इतना परिश्रम करेगा। और सेवा में जो संतुष्टि है इसको रस कहते हैं, रस से संतुष्टि व्यक्ति अनुभव कर रहा है। सब लोग का अनुभव है, खास करके सबका अनुभव है, लेकिन जो गृहस्थी में है और अपने पुत्र या पत्नी को कुछ प्रदान करके वे एक संतुष्टि अनुभव करते, रस है। लेकिन यह कैसा रस है, भक्ति रस है कि नहीं? नहीं, यह भौतिक रस है। अच्छा, रस तो है, इसमें संतुष्टि है, लेकिन इसका दो दोष है। इस रस का दोष है, क्या दोष है? अस्थाई है, ये अस्थाई नहीं है। एक तो ये अस्थाई है। अच्छा, अस्थाई इस अर्थ में कि रस ले रहे हैं, रस ले रहे हैं, संतुष्टि हो रही है, और तब तक एकदम इससे विरत हो जाते हैं। 6 दिन वो दुकान खोलते हैं, बैठते हैं, या ऑफिस खोलते हैं, कितना काज करते हैं, और या 5 दिन और 6 दिन करते हैं, 7वें दिन फोन भी बंद कर देते हैं, एकदम फोन ही नहीं सुनना चाहते। अब वो चले गए कहीं दूर में, और भाई रस है तो आज फोन क्यों बंद कर दिए, आज भी क्यों नहीं कर रहे? तो अब उसे वे थकान महसूस करने लगते हैं। तो अब फ्रेश होने के लिए अब कहीं चल जाते हैं, और भाई उधर अब उस दिन संडे को पिकनिक में ही आनंद महसूस करते हैं, वहीं संतुष्टि है, तो वहीं क्यों नहीं रह जाते हो? लेकिन फिर अब दुकान पर आ जाते हैं। तो इसका भौतिक रस, चाहे वो दुकान का हो या पिकनिक का हो, इसका दोष है कि अस्थाई नहीं है। कुछ समय तक ये अच्छा लगता है और इसके बाद ये फीका हो जाता है। तो एक तो यह अस्थाई नहीं है और फ्रेश भी नहीं है। जिस दे जिस चीज को एक दिन पसंद करते हैं और तब तक कुछ दिन के बाद उसी को नफरत करने लगते हैं, दूसरे चीज को पसंद कर रहे हैं, और तब तक दूसरे चीज को पसंद कर रहे हैं तो उसी से नफरत होने लगा। तो इसको श्रील प्रभुपाद जी भोग त्याग लेकिन एक कठिनाई है हमको तो भोग त्याग ये कौन बुरा चीज है? भोग हम तो अर्थ ले लिए भोग का त्याग, लेकिन ऐसे अर्थ नहीं है, तत्पुरुष समास नहीं है, ये द्वंद्व समास है, भोग और त्याग। कभी भोग में संतुष्टि अनुभव करते हैं, अब कभी कभी भोग ही खराब लगने लगता है, उसका त्याग में संतुष्टि अनुभव करते हैं। तो त्याग करते हैं तब वहां भी अब संतुष्टि का अभाव हो गया। वो कहने का मतलब है कि भौतिक रस का एक दोष है कि बासी हो जाता है, फीका लगने लगता है, और दूसरा दोष है कि अस्थाई है। अभी चपल सुख है, बदल रहा है, और कितना हो ये जीवन का अंत हुआ तो सारे रस का अंत। अभी सुनिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने के लिए बाद में आएगा अवसर, और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को ऐसे मिल सकता है। पहले सुनिए जो टॉपिक है, अभी उधर नहीं गए हैं। तो भौतिक रस के दो दोष हैं कि एक तो फीका हो जाता है, बासी हो जाता है, और ये अस्थाई है, ये भौतिक रोष का दोष है। इसी को श्रील प्रभुपाद जी भोग और त्याग, कभी कभी उसको प्राप्त करना चाहता है, कभी उसको छोड़ना चाहता है। लेकिन भक्ति रस इससे भिन्न है। भक्ति रस कि क्या विशेषता दे रहे हैं, अमृत। भक्ति रस क्या है? अमृत। अमृत कहने का क्या आशय है कि हमेशा यह स्वादिष्ट है, अमृत कभी फीका नहीं होता। भौतिक रस फीका हो जाता है, बासी हो जाता है, लेकिन भक्ति रस फीका नहीं होता, अमृत मैंने फीका नहीं होता है, और यह स्थाई है, यह अस्थाई नहीं है। अमृत, अमृत का उल्टा क्या होगा? मृत। मृत का ही निषेध किया गया और डाल करके, तो जो मरने वाला है, खत्म होने वाला है, अमृत है, तो भौतिक रस मृत है। शरीर खत्म हुआ, सब रस खत्म। लेकिन भक्ति रस की विशेषता है कि अमृत है, यह कभी समाप्त नहीं होता। और स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। किसी भौतिक कार्य में कितना हूं संतुष्टि अनुभव कीजिए, आपको यह गारंटी नहीं देगा कि आगे आप मनुष्य का शरीर प्राप्त करेंगे। लेकिन भक्ति रस की विशेषता है कि थोड़ा भी इसका अभ्यास कर लिए तो अच्छा अवसर मिलेगा। तो यह अमृत है। अमृत दो अर्थ में कि हमेशा यह सुस्वादु है, इसका स्वाद कभी खत्म नहीं होता है, और यह कभी समाप्त होने वाला नहीं, यह कभी इसका माने नाश कभी नहीं होता। तो दो अर्थ में अमृत है, समझ रहे हैं ना? इसका नाश नहीं होगा और इसका स्वाद खत्म नहीं होगा। और इसके आगे एक शब्द है सिंधु। मान लीजिए कि एक चीज है, कुछ रस है, एक गिलास है, ओ भाई खत्म नहीं होगा, वो कभी सूखेगा नहीं और फीका भी नहीं होगा। लेकिन अब एक गिलास के लिए तो मार होने लगेगा, हम लेंगे, या एक व्यक्ति ही अब एक गिलास पी गया, काम खत्म। लेकिन कह रहे हैं कि भक्ति रस ऐसा नहीं, सिंधु। सिंधु मतलब अक्षय भंडार है, कभी ये समाप्त होने वाला नहीं है। अब जितना इसका भोग कीजिए, जितना आनंद लीजिए, कभी ये कम पड़ने वाला नहीं है। तो इस अर्थ में एक ग्रंथ का टाइटल दिया गया भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति का क्या अर्थ होता है? अब बोलो इंदु लेखा, ये भक्ति रस क्या होता है? तू एडवांस में चल रही है।
भक्ति में की हुई प्रेम पूर्वक सेवा,
भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, मदन मोहन की प्रेम पूर्वक सेवा, ये भक्ति रस। सेवा में, भगवान की सेवा में एक रस है, और यह रस अमृत है और अक्षय है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तब आप लोग हो गए सक्षम भक्ति रसामृत सिंधु, तीन पदों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कुछ समझ में आ रहा है तीन पद का अर्थ? ठीक है भाई, देखिए जीव की यह प्रवृत्ति है क्यों, प्रेम किए बिना नहीं रहेगा। कोई भी प्राणी है तो प्रेम किए बिना नहीं रहेगा, किसी न किसी से प्रेम करेगा। लेकिन अब वो कहीं प्रेम करता है लेकिन पूर्ण संतुष्टि नहीं होती, वो भौतिक रस है। प्रेम किए बिना कोई नहीं रह सकता। यहां तक कि बाघ है, बहुत हिंसक होते हैं ना, वो भी प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं अपने बच्चे से तो करते ही है। वो कोई भी व्यक्ति प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन कठिनाई क्या है कि अपने प्रेम को कहाँ रखना है, किधर नियोजित करना है, यह ज्ञान नहीं है। अब इसलिए वो संतुष्टि नहीं मिल रही है। देखिए कभी कभी कुछ नट बोल्ट होता है, कुछ ये सिस्टम होता है ये बढ़ाने घटाने का, तो उसमें कुछ छिद्र है, कुछ खूंटी होता है। अब जब तक छिद्र में वो नहीं पहुंचेगा तब तक वो सेट हो नहीं पाएगा, वो इधर से उधर लुढ़कता रहेगा। उसी तरह जब तक व्यक्ति हमें कहाँ प्रेम करना है इसको समझ न जाए और अपने प्रेम को वहाँ नियोजित न करे, तब तक वो अस्थाई नहीं रहेगा, वहां से फिसलता ही रहेगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो मन बहुत भारी जीव का मित्र है। ऐसे लगता है कि मन कितना चंचल है, हम लोगों को कहाँ कहाँ खींच ले जाता है। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो मन बहुत भारी मित्र है, इस अर्थ में कि जब तक कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक कहीं स्थिर नहीं रह सकता, गलत जगह पर अटक नहीं सकता। थोड़ा देर जाता है लेकिन उसको छोड़ करके जब तक भगवान तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो संतुष्ट। किसी प्राणी की कठिनाई यह है कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम की प्रवृत्ति है, लेकिन उचित आश्रय नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। प्रेम करते हैं फिर भी निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण से प्रेम करें तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, कृष्ण भी संतुष्ट होंगे और सारा समाज भी संतुष्ट हो जाएगा। वर्तमान में क्या हो रहा है, हम किसी से प्रेम करते हैं लेकिन वहाँ फ्रस्ट्रेशन तो आना ही है, हम भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, निराश होते हैं। जिससे प्रेम करते हैं वो भी असंतुष्ट होता है और दूसरे लोगों को भी कुछ लाभ नहीं होता है। लेकिन यदि जो प्रेम का उचित विषय है वहाँ प्रेम को नियोजित कर दिया जाए तो हमें अब कोई निराशा का प्रश्न नहीं है। वो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का एक उद्देश्य यह भी है कि अपने प्रेम को सही जगह पर स्थापित करना, और वे हैं भगवान। यदि कृष्ण से हम प्रेम करते हैं, अपने प्रेम को कृष्ण तक ले जाते हैं, वहाँ स्थापित करते हैं, तो हम भी संतुष्ट होंगे, भगवान भी संतुष्ट होंगे और सारा संसार भी संतुष्ट होगा। और दूसरे जगह प्रेम को नियोजित करते हैं, स्थापित करते हैं, तो हमें भी संतुष्टि नहीं है, जिससे प्रेम कर रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं होता है और समाज के लोग भी संतुष्ट नहीं हो पाते। और इसलिए प्रेम का जो उचित विषय है उसका पहचान करना और प्रेम को वहाँ स्थापित कर देना, ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक उद्देश्य है। और वे हैं प्रेम के उचित विषय हैं भगवान। यदि हम कृष्ण से प्रेम करें तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। आप समुद्र मंथन की कथा जानते हैं, जब समुद्र मंथन किया गया तो समुद्र मंथन पर टिप्पणी देते हैं सुखदेव गोस्वामी, क्या उनकी टिप्पणी है समुद्र मंथन की कथा कह करके, और कह रहे हैं कि एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा। एवं सुरासुर गणा, समुद्र मंथन में देवता भी थे असुर भी थे, और दोनों अलग अलग स्थान पर नहीं मंथन किए, एक स्थान पर किए, एक समय में किए, दोनों का उद्देश्य एक था, अमृत प्राप्त करना, संसाधन एक था, सब चीज एक था ना, लेकिन फले विकल्प, फल में अंतर हो गया। क्या अंतर हुआ कि देवता लोग छक करके अमृत पान किए और न दैत्य, दैत्य लोग नहीं, वे क्यों अंतर हो गया। यत पाद पंकज रज फ्रेणा न दैत्य, देवता लोग भगवान के चरण रज का आश्रय लिए थे और दैत्य लोग नहीं, अंतर केवल इतना ही था ना। तो इसी के पर अब सिद्धांत दे रहे हैं कि यह केवल समुद्र मंथन की बात नहीं है, यह किसी भी उपक्रम यही लागू होगा कि हम कोई चीज है स्थापित करते हैं, यज युज्यते सुबसुकर्म मनोबचो भी, कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यद युज्यते असु बसु कर्म मनो बचो भी देहात्म जादिसु निभिस तत् सत् पृथक्त्वात्। यदि भगवान से हट करके धन प्राण कर्म वाणी वचन इससे किसी भी प्राणी से हम उसको जोड़ते हैं, इसको सेवा में लगाते हैं अपृथक्त्वात्, लेकिन भगवान से अलग हो करके, जो कह रहे हैं कि सब असत भवती भी एकदम निरर्थक चला जाता है, और तैरेव सत भवती यत क्रियते पृथक्त्वात्। लेकिन इसी संसाधन से यदि सेवा भगवान के की जाए तो कह रहे हैं कि सर्वस्य तद भवति, वे सबके लिए होता है, मूल निषेचनम यत, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी दिया जाए तो वृक्ष के हर अंग को संतुष्टि होगी, तो उसी तरह यदि भगवान से प्रेम किया जाए तो सबको संतुष्टि होगी, भगवान को भी संतुष्टि होगी, जो प्रेम कर रहा है उसको भी संतुष्टि होगी, और भी जो दूसरे लोग हैं उनको भी संतुष्टि होगी। तो भक्ति रसामृत सिंधु का इस ग्रंथ का एक उद्देश्य है कि जो प्राणियों में प्रेम करने की प्रवृत्ति है वह उसको उचित दिशा प्रदान करना, उस उचित दिशा प्राप्त करके ही वे सबके संतुष्टि का कारण बन सकता, नहीं तो किसी के संतुष्टि का कारण नहीं बनेगा। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कई एक बातों को इस आमुख में प्रस्तुत किए हैं बहुत विस्तार से, तो हम तो संक्षेप में ये सब बातों को कहे। अंत में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषतया उन लोगों को भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में समस्त मित्रों तथा शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो पाश्चात्य देश में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। और ये ग्रंथ सबके लिए है, सबको गोस्वामी पद तक ले जाने के, लेकिन विशेष रूप से इस्कान के भक्तों के लिए। रूप गोस्वामी सुहृदम प्रमोदाय लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भाई ये जो समरी स्टडी है ये स्पेशली इस्कान डिवोटी के लिए, सबके लिए, लेकिन विशेष करके इस्कान के भक्तों के। किस लिए? कि अपने भक्ति में स्थिर रहें और अपने भक्ति की निरंतर वृद्धि करें। तो ये कुछ कुछ बातें ये आमुख में लिखी गई हैं, आप लोग इसको फिर से पढ़िए, कोई कठिनाई हो पूछिए। और अभी आप लोग जितनी बात सुने इसमें से कुछ कठिनाई हो तो अभी पूछ सकते हैं। हाँ आए,
आपने भी क्लास में पशु के दो लक्षण बताए थे।
ठीक, पशु के दो लक्षण, एक तो घास चरते हैं, घास चरते हैं ना, और उनको बांध करके रखा जाता है। तो इस दो लक्षण को प्रकट कर रहे हैं तृण में, दांत में तृण लेकर के और गले में वस्त्र बांध करके। वस्त्र रस्सी के स्थान पर बांधे हैं। अब यहाँ गौशाला में तो पशुओं को रस्सी में नहीं बांधा गया है, लेकिन गांव में जाएंगे तो प्राय प्राय रस्सी में बांधा जाता है। यहाँ भी बंधन है, लोहे का घेरा बनाए हैं, कुछ किए हैं, पशु बांध करके रखे जाते हैं, पगहा बनाया जाता है। मुक्त प्रग्रह न्याय, पगहा आप लोग तो गांव वाले जानते होंगे, पगहा में बांधा जाता है। हम लोग जब स्कूल में थे तो एक कुछ हाथ का कारीगरी दिखाना होता था, एक पेपर ही था, तो उसमें प्राय लड़के रस्सी भर करके पगहा बना करके गुरुजी को दे देते थे। पशुओं को गले में बंधन रहता है, इस बंधन को दिखा रहे हैं। आए और समुद्र मंथन की कथा कह करके लास्ट में बोले हैं, एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतासुरगणा फलमाप अंजसापु यत्पाद पंकज रज प्रेणान दैत्या। तो ये तो देवता और दैत्य पर टिप्पणी दी, इसके बाद सिद्धांत दे रहा है, यद कर्म मनो बचो भी। हम माइक लेकर के बोल रहे हैं।
हरे कृष्णा महाराज। महाराज, क्या भक्ति रस और भौतिक रस में स्वार्थ का अंतर आ सकता है या नहीं? कि भौतिक रस स्वार्थ जनित है और भक्ति रस में स्वार्थ नहीं है।
हाँ, ये एक मुख्य अंतर है।
पर अगर भक्ति कोई स्वार्थ के कारण कर रहा हो तो सकाम अगर हो तो ये लिख सकते हैं या नहीं?
भक्ति तो स्वार्थ पर आधारित है, और एक्चुअली वो रस रूप नहीं बन पाता है। स्वार्थ के पूर्ति का साधन होता है, लेकिन आस्वाद्य तो तभी बन पाता है जब उसमें और सामग्री अनुभव विभाव मिलता है, जब उच्चतर अवस्था को प्राप्त करता है। इतना जरूर है कि भक्ति किसी भी अवस्था में आनंददायी है, क्योंकि अतरंगा शक्ति की वृत्ति है। और भक्ति भौतिक रस और भक्ति रस के स्वार्थ का भी विश्लेषण किया जाए, वो भौतिक रस कितना हो विस्तार प्राप्त करे, तो किसी न किसी रूप पर स्वार्थ पर ही आधारित है। और भक्ति रस कितना हूँ स्वार्थ पर आधारित हो, फिर भी इसमें परार्थ सन्निहित है, क्योंकि भक्ति की विशेषता है कि प्रीणनम सर्व जगतम। भक्ति भले ही व्यक्ति अपने लिए करे, लेकिन इससे दूसरे को भी प्रसन्नता होती है। तो ये सब भक्ति के लक्षण अलग दिए गए हैं। वर्तमान में मैं इतना कह सकता हूँ कि भौतिक रस और भक्ति रस के स्वार्थ पर यदि विभाजन किया जाए, वो भक्ति रस ने भौतिक रस का कितना ही उदारीकरण कीजिए, फिर भी वो स्वार्थ पर आधारित है। और भक्ति रस कितना ही संकीर्ण हो, फिर भी इसमें परार्थ है।
और रस का अर्थ स्वाद लिख सकते हैं?
हाँ, संतुष्टि जिससे प्राप्त हो वही रस है ना।
अपने लास्ट में तीन चार चीजें बोली थी कि कृष्ण की सेवा में लगाने में, जो समुद्र मंथन के उसके बाद,
हाँ हाँ,
कि अगर व्यक्ति अपना धन कुछ कुछ बोला था तो वो आप रिपीट,
तो भागवत से उसको देख लेना चाहिए। असु, असु मतलब प्राण, मतलब इंद्रिय, वसु मतलब धन, यदि योजते सु वसु कर्म मनो बचो भी। तो बचो भी वो तो बहुवचन में दे रहे उपलक्षण है। और भी असु मतलब इंद्रिय, वसु मतलब धन, कर्म समझ रहे हैं, मन वचन।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई व्यक्ति स्थिति परिस्थिति में भगवान तक नहीं पहुंच सकते तो भगवान स्वयं आते हैं।
हाँ।
तो हम सब तो सब उसी स्थिति परिस्थिति में है कि हम लोग तो भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो हम तक भगवान कैसे पहुंचेंगे?
वो तो डिपेंड करता है कितना भगवान को चाह रही हो। भगवान तक तो नहीं पहुंच रही हो, लेकिन ये जांचना पड़ेगा ना कि कितना भगवान को ही चाह रही हो। पूरा पूरा हृदय से भगवान को ही चाहने पर तो भगवान तो आ जाएंगे। और तुम काहे को ऐसा झूठ बोल रही हो? तुम तो भगवान के पास पहुंच गई हो ना। वृंदावन की विशेषता है कि यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आंख से व्यक्ति देखे या न देखे, कोई ब्रजमंडल में घूम रहा है तो भगवान का वो अनुभव करता है, सानिध्य तो है। तो देखो या न देखो, भगवान का सानिध्य यहाँ है। जो यहाँ वृंदावन पहुंच गया, ये भगवान पहुंचा दिए, अभी तू कह रही है कि कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पहुंचना है, यहाँ तो जा करके कहीं देखना है, कहीं निकुंज में जा करके कुंज में खोजो, कहीं राधा रानी का पांव दबा रहे होंगे, कोई पद याद है किसी को? पांव पलोटत वही है। यहाँ ब्रजमंडल में रहीम कवि का एक दोहा है कि यहाँ ब्रह्म को खोजना नहीं पड़ता है। अब कहीं कुंज में जा करके देखना है कि किस कुंज में राधा रानी का चरण दबा रहे। और जब वृंदावन आ गए तो भगवान के नजदीक आ गए। तो वृंदावन में है तो बहुत संभावना है कि इसी जन्म में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, सेवा मिल जाएगी। और कदाचित उत्कंठा नहीं है तो इस जन्म में नहीं हुआ तो फिर दूसरे जन्म में तो जरूर हो जाएगा। अपराध इत्यादि कठोर हो जाता है, कलुषित हो जाता है, तो उत्कंठा नहीं जग पाती है। लेकिन कोई धाम का सेवन कर रहा है तो भगवान उसको ऐसा जोनी प्रदान कर देते हैं कि अब अपराध का कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई कीड़ा मकोड़ा भालू बंदर मोर कुछ भी बना देंगे तो उस जोनी में अपराध का नहीं है, तो इसके बाद अपने लीला में ले लेते हैं। और जो हो आगे, अब कल पूछिएगा आगे की बात। एक बज गया है, हमको आज कहा गया है कि जीव गोस्वामी का आज आविर्भाव तिथि है, तो एक बजे से नीचे प्रोग्राम है मंदिर में, तो आप लोगों को वहाँ जाना है। हाजिरी 2 पन्ना में दिए हैं। अभय नृसिंह दास।